बाबा के अनन्य अनमोल रतन, बाबा की सेवाओं में राइट हैंड बने हुए समर्पित भाई, संगम युग पर ये भी हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो भगवान के नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में हरेक को अपना योगदान देने का सुंदर अवसर प्राप्त है। बाबा हम सबको बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। कोई भी फरमान करना होता है तो सम्मान की याद दिलाते हैं। मुझे दादी प्रकाशमणि जी की बहुत सी विशेषताएं, बहुत से अनुभव साथ में रह करके हुए हैं, सुनाने का दिल करता है, क्योंकि दादी जी बहुत हुज्जत से, हक से आज्ञाएं करती थी, फरमान करती थी, और फरमान करने के पहले उसको बहुत ऊंचे सम्मान की स्मृति दिलाती। बाबा को भी हम देखते, आज भी बाबा ने कहा, बच्चे नंबर वन फरमान है देही अभिमानी बनो। कुछ भी हो, कितने भी माया के तूफान आए, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आ जाएं, लेकिन कर्म इंद्रियों से कभी कोई भूल नहीं करना, पाप नहीं करना, और माया तुम्हारा क्या कर सकती है, क्योंकि सर्व समर्थ स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है। तो सम्मान याद दिलाया ना, इस सम्मान की स्मृति में अगर रहें कि हमने किसको अपना साथी बनाया है, कौन हमारे साथ कंबाइन रहता है, तो कोई भी बात कितनी भी बड़े रूप में सामना करने के लिए आए वो सहज पार हो जाती है। बाबा के फरमान हम सबके कल्याण के लिए समय प्रसमय मिले हुए हैं। अमृत वेले से रात्रि तक बहुत से फरमान बाबा ने किए हैं। अगर आप लिस्ट निकालें तो मुरली से रोज कोई न कोई फरमान मिल जाता है। मैं कहता हूं 365 दिन की अगर मुरली आप लें तो 365 फरमान मिल जाएंगे। मैंने एक बार क्या किया, वरदान को चेंज करके फरमान लिखना शुरू कर दिया मुरली के नीचे। तो वरदान शब्द तो सबको बहुत प्रिय है और बहुत भावना से सभी सुनते हैं, लेकिन जब फरमान शब्द आने लगा तो विदेशी लोगों ने तुरंत कहा कि भाई ये शब्द बड़ा कड़ा है, इस शब्द को चेंज कर दो। फरमान माना आज्ञा, आर्डर। आर्डर को अगर कहीं मिस किया, कहीं नहीं पालन कर पाए, तो मिलिट्री के अंदर भी अगर आर्डर हो जाए और न कोई कर पाए तो सूट कर देते हैं। तो इसलिए उस समय 2 मास तक मुरली के नीचे फरमान चलाए, और उसके बाद इतना लोगों के पत्र आने लगे कि भाई ये बंद करो, फरमान तो वरदान तो बाबा का ठीक है, लेकिन फरमान पालन करना मेहनत है, इसमें कहीं कहीं डर लगता है, कुछ भी थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो गया तो पता नहीं कौन सी सजा मिल जाएगी। इसलिए दादी जी जब भी कोई सेवा लेती थी, एक बार की बात आप सबको शायद कभी सुनाई हो कि यहां पर उस समय स्टीम सिस्टम नहीं थी, मधुबन में शुरू में कोयले आते थे, और वो भी बहुत दूर से, धनबाद बिहार छत्तीसगढ़ उस साइड से कोयले का ट्रक आता था। तो ट्रक के बाद एक भाई गया तो पूरी ट्रेन कोयले की बुक करके आ गया। और वो ट्रेन ऐसे समय पर यहाँ पर पहुंची जब मजदूर छुट्टी पर होते हैं, होली के दिन थे और राजस्थान में होली बहुत मनाते हैं, इसलिए कोई मजदूर होली के 8-10 दिन आगे पीछे नहीं आते। और यहां से रेलवे से बार बार नोटिस आया कि अगर 1-2 दिन में इसको खाली नहीं किया तो बहुत पेनल्टी पड़ेगी। तो दादी जी को आया कि इतना सारा पांडवों का दल, इतने सब भाई मधुबन में रहते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है ट्रेन के कोयले खाली करना, अभी अभी खाली करवा देते। तो दादी कुछ नहीं बोली और क्लास के बीच में आई और कहती है, मैंने तो एक पवनपूत की कहानी सुनी है, पवनपूत, और हमारे पास इतने पवनपूत रहते हैं, इतने हनुमान हैं, इतने बाल ब्रह्मचारी हैं, इतनी 6 महारथियों की, महावीरों की सेना है, अरे एक छोटा सा ट्रेन का डब्बा खाली करना क्या बड़ी बात है, चलो चलो हम सब चलते हैं। ऐसी ललकार की, ऐसा जोश भरा सबके अंदर, जो फटाफट सब तैयार हो गए और ट्रेन को फटाफट खाली किया और कुछ ही घंटों में उठा करके ट्रक से ऊपर लेके चले गए। ऑर्डर था, फरमान था कि कोयले की ट्रक खाली करनी है, लेकिन उसके पहले खूब समान स्मृति में दिलाया और समान स्मृति भी दिलाने के कारण सबको इतना जोश आ गया। वैसे भी हमारे यादगार शास्त्रों में भी ये कहानी है कि जब लंका में हनुमान को भेजना था तो इतना समुद्र कौन पार करेगा, तो कहते हैं जामवंत ने हनुमान को अपने समान की स्मृति दिलाई कि तुम कौन थे, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, बहुत उनकी विशेषताएं वर्णन की, तो उसके अंदर जोश आ गया और छलांग लगाई, एक ही छलांग में समुद्र पार कर गया। तो ये हनुमान का दल, हनुमान की सेना कितनी महान है, कितनी बलवान है, लेकिन कोई भी असंभव कार्य संभव तभी होता जब उसको समान की स्मृति आ जाए। तो कोई भी कार्य मैंने देखा, जितने बड़े बड़े कार्य हुए, चाहे ओम शांति भवन बनाना था, मजदूर नहीं थे, मिस्त्री कोई ऐसे नहीं थे, कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं थे, और दादी जी इतना पांडवों में जोश भरती, रोज नया नया सामान याद दिलाती और खुद जाके खड़ी होकर के कहती, चलो पहाड़ उठाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, कैंची चढ़ाएंगे, 1 साल में इतना बड़ा ओम शांति भवन बना दिया। तो कहने का भाव है कि कोई भी फरमान बाबा ने जो हम सबको याद दिलाए हैं, उसके पीछे सामान बहुत काम करते हैं। कितने फरमान हैं उसकी लिस्ट देखेंगे तो, मैं आज सोच रहा था, मुझे जब से टॉपिक मिली, पहले भी मैंने इस पर क्लास कराए हैं, तो एक बहुत अच्छे फरमान की लिस्ट सामने आई, लेकिन उसके पहले मैं आपके आगे कुछ सामान स्मृति में दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सामान सबसे पहला फरमान ही बाबा का ये है कि बच्चे अपने सामान में रहो। मुझे बाबा ने इतनी ऊंची जीवन दी है, इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, सर्व बंधनों से मुक्त किया है, सर्व झंझटों से छुड़ाया है, मैं समझता हूं ऐसी बेफिक्र बादशाही की जीवन जिसमें कोई भी प्रकार का गम नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा पालनहार स्वयं बाबा है। और अरमान कितना बड़ा है कि आज अरमान रखा, आप तो सबके पूर्वज हो, आपकी वंशावली कितनी बड़ी है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की सारी वंशावली, उसकी पालना करने के लिए आप पूर्वज निमित्त हो। बाबा का अरमान कितना है, केवल एक छोटे से परिवार की पालना करना आज लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, और बाबा हम सब पर ये अरमान रखता है, बाबा की ये इच्छा है कि मेरे बच्चे सारे विश्व की पालना करें, अपने श्रेष्ठ वृत्तियों से, अपने शुद्ध संकल्पों से, अपने अच्छे वाइब्रेशन से। बाबा के अरमान अगर आप थोड़ा सा देखो, चेक करो, कितने ऊंचे ऊंचे अरमान अपने बच्चों से रखे हैं, और कौन हैं ये सब बच्चे, अगर देखा जाए कितने साधारण लोग जिनके पास कोई भी पढ़ाई लिखाई विद्वता डिग्री कोई भी प्रकार की पोस्ट पोजीशन नहीं है, बाबा ने उनमें इतनी उम्मीदें रखी हैं, इतनी आशाएं रखी हैं, और अरमान रखता है कि ये विश्व परिवर्तक हैं, ये विश्व के आधार मूरत हैं, ये उद्धार मूरत हैं, यही विश्व कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी मेरे बच्चे हैं। तो रहता है इतना नशा सबको कि सिर्फ आपको एक ड्यूटी मिली है, एक कोई सेवा मिल गई है, कोई को भंडारे की सेवा है, भोजन बना रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कोई सेवा कर रहा है। स्थूल सेवाएं अधिकतर पांडवों को मिलती हैं, और पांडवों को जब स्थूल सेवाएं मिलती हैं तो कभी कभी समान थोड़ा डाउन होने लगता है कि बहनों को तो लेक्चर करना है, वो तो भाषण करती हैं, उनको तो सीट मिली है और हमको तो यही सेवा करनी, सदा दरी बिछानी है, माई की संभालना है, यही करना है। बहुत सारी संकल्प आ सकते हैं, कोई को ना आते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी जब समर्पित हुए तो बाबा ने ड्रामानुसार धीरे धीरे चांस दिए हैं, लेकिन सब प्रकार की स्थूल सेवाएं ही करने को मिली। और 11 साल तक एक जैसी कर्मणा सेवा, चाहे वो धोबी घाट हुआ, रोटी बनाने का काम हुआ, पानी गर्म करने का, कमरों में पहुंचाने का, झाड़ू लगाने का, अनाज साफ करने का, कोई मजदूर तो मधुबन में इतने थे नहीं, सब कार्य बाबा ने अपने समर्पित बच्चों से यज्ञ के कराए। और दीदी दादी बहुत ऊंचे सम्मान से देखती थी, ऐसा नहीं ये काम छोटा कर रहा है, लेकिन उनको ये लक्ष्य रहता था कि इसने जो कार्य किया है, जो सेवाएं की हैं, बहुत महान सेवाएं हैं, यज्ञ की सेवाएं कर रहा है। बड़े भी प्रसन्न हुए, और मैं ये कहता हूं उसके आधार से स्वयं यज्ञ पिता प्रसन्न हो गया, जिसने बाबा के यज्ञ की कोई भी सेवाएं दिल जान से की, प्यार से की, अपना समझ करके की, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो। मैं समझता हूं मैंने जो शुरू शुरू में सेवाएं की हैं 11 साल तक, वो गर्म पानी जब सुबह गर्म करते थे ना, ठंडी के दिनों में 2 बजे उठ करके बॉयलर एक गर्म होता था, टंकी में पानी गर्म करते थे और 4 बजे से सब कमरों में पहुंचाते थे, पांडव भवन के जितने कमरे थे, तो सुबह सुबह जो बाल्टी दो दो भर भर करके ले जाते थे कमरे में, तो मैं कहता हूं बाबा ने मेरे हाथ मजबूत कर दिए, शरीर मजबूत कर दिया। जितनी कर्म इंद्रियों को शुद्ध, शक्तिशाली, शीतल बनाने का अच्छे से अच्छा साधन है वो कर्मणा सेवा है। मनसा से योग लगाने में मेहनत लगती है, लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन कर्मणा सेवा अगर किसी ने यज्ञ की प्यार से की है, दिल से की है, तो उसकी कर्म इंद्रियां अपने आप शीतल है, शांत है, कोई भी प्रकार की उत्पत्ति नहीं है, लेकिन बहुत स्नेह से अपना समझ करके यज्ञ हमारा है, बाबा का ये कार्य है। एक छोटा सा सेंटर आपको नहीं मिला, एक कोई रिट्रीट सेंटर नहीं मिला, लेकिन जो सेवाएं मिल रही हैं वो विश्व परिवर्तन के लिए हैं। ये यज्ञ भगवान का रचा हुआ है, बहुत बड़े सेवा के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। अगर स्थूल कार्य करते हुए मनसा बहुत शक्तिशाली है, मन के संकल्प बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो कार्य कैसा भी क्यों ना हो उससे बहुत सेवाएं होती हैं। खुशी के संकल्प से, चेहरे से भी अनेक आत्माओं को प्रेरणाएं मिल जाती हैं, प्रसन्नता संतुष्टता अनेक आत्माओं को प्रेरती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रकार की यज्ञ की सेवा करते हुए, कोई भी सेंटर्स की जवाबदारी संभालते हुए, हम अपने ऊंचे सम्मान को जरूर स्मृति में रखें। तो मैं अधिक सम्मान की लिस्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, समझदार हैं, और बाबा तो रोज कोई न कोई सम्मान से ही संबोधित करते। बाबा कहते हैं जितने बाबा के टाइटल हैं उतने आप बच्चों के सम्मान हैं, और बाबा के टाइटल तो था है। कितने हैं, एक मंदिर में चले गए हम, एक दिन एक मंदिर में गए तो वहां पर करीब छोटी छोटी शिवलिंग की मूर्तियां, कहते थे 51,000 है शिवलिंग की, और उस 51,000 की छोटे शिवलिंग के ऊपर हर एक नाम अलग अलग था। कहा कितने शिव बाबा के नाम हैं, और कहता है जितने मेरे नाम हैं, जितने मेरे टाइटल हैं, उन सब के तुम बच्चे मास्टर हो। बाबा के टाइटल वही बच्चों के समान, लेकिन उस समान में स्थित रहना, उस नशे में रहना, जिससे कभी ये ना आए कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मान शान पद प्रतिष्ठा जिसके पीछे आज सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कहते भागने की क्या जरूरत है, बाबा ने हमको इतना मान दिया है, इतनी ऊंची नजर से देखा है, अगर सचमुच हम रोज उस सम्मान में रहते हैं तो बाबा के फरमान भी ऐसे लगते कोई बड़ी बात हो जाएगा, कर लेंगे, क्या बड़ी बात है, कि बाबा की आज्ञा ये फरमान हम पालन करेंगे। और तीव्र पुरुषार्थी बाबा उसको ही कहता है कि बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, होगा नहीं होगा कौन कर सकता है, क्योंकि ये भाषा भी कई बार हम यूज कर लेते हैं, पास तो आठ ही होने वाले हैं, 16108 भी नहीं कहते बाबा, कभी कभी साकार मुरलियों में कह देता है कि 108 को भी थोड़ा बहुत सजा खानी पड़ेगी, विले हो जाते हैं, जब 8 और 108 ही नहीं पास होंगे तो हमारा कहां नंबर है। इसलिए हम बाबा के ऐसे शब्दों को लेकर के अपने मार्ग को कठिन मार्ग या अलवेलेपन का मार्ग न बना दें, बहुत सरल मार्ग है, सहज मार्ग है। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे जो मैंने मर्यादा की फरमान की लकीर बना करके दी है, सीता को भी आज्ञा की थी इस लकीर से अंगूठा भी बाहर नहीं निकालना, लेकिन निकाला तो क्या हाल हो गया। हम सभी भी अगर ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के लकीर की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते तो माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी कितने भी अपने नए नए रूप से आए, कितने भी वैरायटी रूप आए, उनको सहज रीति से हम पार कर सकते हैं। तो पहले 5 सम्मान, सबसे पहला सम्मान है कि रोज स्मृति में लाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सर्व शक्तियों का अधिकारी बाबा ने हमको बनाया है, बार बार कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परीक्षा आ जाए, क्योंकि हम संगठन में रहते हैं, संगठन के बीच में हैं, कोई न कोई बातें नीचे ऊपर होती हैं, सामना करना पड़ता है, लेकिन शक्ति जिस शक्ति की जहां जरूरत है, मान लो वहां हमें सहन करने की जरूरत है, समाने की जरूरत है, उस समय कहीं सामना न कर लें, जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है वो शक्ति अगर समय पर याद आती है तो इसको तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता, उसको फरमान वरदार कहा जाता है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस सम्मान में बार बार अपने आप को ला करके अपनी एक एक शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाना, और समय पर वो शक्ति यूज होनी चाहिए, जिस समय आवश्यकता है उसी समय याद आए अभी मुझे समाना है, अभी मुझे सहन करना है, अभी मुझे सामना करना है, या परख करके निर्णय करके अपने आप को पार कर लेना। कई बार सबसे बड़ी शक्ति हम कहते हैं परखने की शक्ति है, हर एक अपने अपने हिसाब से कहेगा ये शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन यदि कोई भी रूप से माया आती है, क्योंकि तो बाबा कई बार कह देते हैं जिस रूप से तुम माया को परख लोगे वो रूप परिवर्तन करके तुम्हारे सामने आएगी, उस रूप से नहीं आएगी, इसलिए परखने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो, समझ में आए कि ये माया का स्वरूप है, ये विकारों का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से मेरे सामने आ रहा है, चाहे वो लगाव झुकाव के रूप में आता है, कोई महिमा करता है, कोई बहुत प्यार से सामने आता है, वो अपना अधिकार रख करके आता है, लेकिन कहीं न कहीं माया के सूक्ष्म रूप जिनको परख लेना। और परखने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि की दिव्यता, बुद्धि की स्वच्छता, अगर बुद्धि में कोई भी प्रकार के डिस्टर्बेंस है, बुद्धि बोझिल है, भारी है, बहुत प्रकार के चिंतन बुद्धि में चलते हैं तो हम माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख नहीं पाते, और परख नहीं सकते तो निर्णय नहीं होता, और निर्णय नहीं होता तो कहीं न कहीं हार हो जाती, स्वप्न में भी हार होती है, कई बार बोलचाल में भी हार हो जाती, कई बार कर्म में भी आ जाते, इसलिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है संगठन के बीच में, और उसके लिए अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य बनाने की आवश्यकता, बहुत दिव्यता संपन्न संकल्प उत्पन्न हो, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, ये भी फरमान किया है, बच्चे हरेक की मस्तक मणि को देखो, बहुत ऊंचा सम्मान है कि मैं एक मस्तक मणि आत्मा, मस्तक के बीच में विराजमान एक चमकती हुई मणि हूं, और यदि आप हम सब और विशेष करके युवा काल के अंदर कुमार लोग अगर ये अभ्यास करें, बाबा ने एक मुरली बहुत अच्छी चलाई है, आप सभी पूरी भट्टियों की मुरली अगर स्टडी करेंगे तो कुमारों के संगठन में विशेष प्रेरणा दी है कि जब कभी किसी से बात करते हो, किसी को देखते हो, तो मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि को देखो। इस सांप को देखोगे तो डसेगा, इसलिए आत्मा मणि है और मैं आत्मा मणि इस मणि पर दृष्टि दे रही हूं, मणि को देख रही हूं, मणि को देख करके बात करो। तो ये एक सोमान है और इस सोमान के आधार से इस फरमान को हम बहुत सहज रीति से पालन कर सकते हैं कि मैं मस्तक मणि इस मस्तक के बीच में आत्मा को देख रही हूं। इसलिए जो बाबा का फरमान है, बच्चे दैहिक दृष्टि से नहीं देखो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, आत्मा को देख करके बात करो, आपकी दृष्टि पवित्र हो, वृत्तियां भाई भाई की हों। ये फरमान है। अब ये दृष्टि पवित्र हो, इसकी कंप्लेन कितनी है? अगर आप सबसे चिट्ठी लिखाई जाए कि आप अपनी अपनी कमियां कमजोरियां लिख करके दें तो 90% चिट्ठियों में यही आता है। क्या करें, संगठन में रहते हैं, बहनों के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, ऐसी सेवाएं हैं, ऐसी नौकरी है, ऐसी जॉब है जहां पर कहीं न कहीं वृत्ति चंचल होती है, दृष्टि खराब हो जाती है। और उसका मूल कारण है मैंने आत्मिक स्थिति का इस देह से डिटैच होने का गहरा अभ्यास नहीं किया। साधारण रूप से योग कर रहे हैं लेकिन जो बार बार बाबा अभ्यास कराता, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, इस देह से डिटैच होने का अभ्यास करो, ये कर्मेंद्रियां मुर्दा हैं, तुम आत्मा एक चैतन्य शक्ति हो, बहुत स्थिर स्मृति से अपने सोमान की स्मृति में स्थित होकर के अपने मस्तक के बीच में रहने का अभ्यास करो, इस देह भान को भूलने का अभ्यास करो। ये तपस्या है, ये मेहनत है, ऐसे ही इन कर्म इंद्रियों को शीतल नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जितनी अभ्यास, जितना प्रैक्टिस की जाए, जितना दिन रात अपने मन और बुद्धि को बिजी रखा जाए, बिजी माना स्थूल सेवाओं में बिजी कर देना यही नहीं, लेकिन मन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छा अच्छा चिंतन, अच्छे अच्छे सुमिरण में रहे, जिससे मन नशे में रहे, सोमान में रहे, भाग्य का स्मरण रहे, भगवान ने इतनी शुद्ध जीवन पवित्र जीवन दी है, कुछ बहुत बड़ी जवाबदारियां सौंपी हैं। जब मुझे कभी ऐसे साधारण संकल्प आते भी हैं तो मैं कहता हूं मुझे स्टेज कौन सी मिली है, मुझे बाबा ने सीट कौन सी दी है, कहां पर बिठाया है, किस गोदी में बिठाया है, ये एक साधारण संकल्प मुझे क्यों टच कर रहा है, क्या जरूरत है इसकी। उस समय अपने आप का टीचर बनना, अपने आप को संभालना, अपने आप को समझाना और उस माहौल से अपने आप को किनारा कर लेना, इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। थोड़े समय के लिए भी आप अपने विचारों को चेंज कर लें, कोई न कोई अच्छा संकल्प दे करके, कोई अच्छा सकारात्मक चिंतन दे करके, जहां पर आपको इंटरेस्ट जागता है, कोई अच्छा गीत सुनने में इंटरेस्ट है, कोई अच्छे साहित्य पढ़ने में इंटरेस्ट है, कोई अच्छी और चिंतन को और अच्छा चिंतन देने के लिए कोई विधि आती है, तो वो विधि अपना करके अपने ऐसे साधारण संकल्प, दैहिक संकल्प, उन संकल्पों को हम चेंज कर सकते हैं। और पहले फरमान को, पहला फरमान तो समझ गए, पवित्र बनो, योगी बनो या देही अभिमानी बनो, जिसको आज बाबा ने कहा। ये जो पहला फरमान है, इस फरमान को हम तभी पालन कर सकते जब हम बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित रहे। मैं विजयी रतन हूं, बार बार एक सम्मान स्मृति में आता है कि बाबा ने कहा बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और तुमने ही कलप कलप विजय प्राप्त की है, तुम्हारी ही यादगार पांडवों को सदा विजयी दिखाया गया है। आप पांडव हो और पांडवों की विजय निश्चित है क्योंकि उनका साथी स्वयं भगवान है। अब ये कितना ऊंचा सम्मान है कि हम पांडव हैं, हम वही कलप पहले वाले विजयी रतन हैं, इसलिए विजय हमारी हुई पड़ी है। कोई भी बात आएगी चली जाएगी, कोई भी पेपर आएगा तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आया है क्रॉस हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं जब स्पीड तेज होती है तो स्पीड तेज करने वाले का दो चीजों पर बहुत ध्यान रहता है, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे नशा चढ़ता है, और मैंने देखा कई बहुत पुरुषार्थ तीव्र करते थे, 2 बजे उठ के योग करेंगे, दिन रात स्टडी करेंगे, और वही अचानक फेल हुए, अचानक फेल हुए। कारण होता है कि केवल पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाई, ब्रेकर का ध्यान नहीं दिया। मान लो आपकी स्पीड बहुत तेज है और कोई रोड ब्रेकर है, कोई ब्रेकर के लिए कोई चढ़ाई उतराई सामने आ रही है, तो आपको ब्रेक पर ध्यान देना, अपने आप को बहुत धैर्यता से ब्रेक लगा करके पार करना होगा। और पेपर कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है कि हम ऊंची मंजिल के राही हैं, मेरे आगे कोई पेपर ही नहीं आता है। पेपर तो हरेक के सामने आते हैं, और कोई न कोई बातें किसी न किसी नए नए रूप में, कभी संस्कार के रूप में, कभी स्वभाव के रूप में, संगठन है कभी टकराव के रूप में, कभी प्रभाव के रूप में, कभी दबाव के रूप में, बहुत सारी बातें आती हैं। अगर उस समय मैं हिल गया, हलचल में आ गया, तो इस जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, जीवन से ही हाथ धोना पड़े। मान लो अगर ब्रेक नहीं लगी और फास्ट स्पीड में गाड़ी चल रही है, उलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं धोखा खा लेंगे। इसलिए संकल्पों को ब्रेक देना, चलो ये कोई हिसाब किताब आया है, पार हो जाएगा, बाबा हमारे साथ है, परिवार हमारे साथ है, और सबसे अधिक दुआएं हमारे साथ हैं। अगर हमने श्रेष्ठ कर्म किए हुए हैं इस परिवार में, बाबा के यज्ञ में रह करके हमने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, उसका नशा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो दुआएं हमें सदा साथ देंगी, बाबा मुझे साथ देगा, और पेपर आया है, पार हो जाएगा। डरने की, तुरंत घबरा जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, मेरे सामने क्यों आया। कई आते हैं, मेरे सामने ऐसी बात क्यों आ गई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा भी होगा, ये हिसाब किताब आएगा, आया है जरूर, कोई पिछला खाता होगा, पिछला होगा, अगला होगा, सामने का वर्तमान में कुछ बना लिया होगा, आया है, पार हो जाएगा। इसलिए फरमान उल्लंघन न हो जाए, ध्यान रखो बाबा का फरमान है। बच्चे, कुछ भी नीचे ऊपर होता है, सबसे बड़ा सम्मान फरमान का मैं ये याद करता हूं कि बाबा ने कहा, बच्चे कुछ भी दिन में, सारे दिन में बीत गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, रात को कम से कम हल्का तो हो जाओ, बाबा को सुना तो दो, बाबा को सुना करके लाइट होकर के, बाबा ये जो हो गया वो आपको समर्पित मैं करता हूं, कल से नहीं होगा, एक संकल्प ले लो, जो हो गया उसको बीती को बिंदी लगा दो। ये फरमान है ना बाबा का कि लाइट ड्रेस पहनो और रात को रोज सुना करके हल्के हो करके फिर सवेरा जब शुरू करो तो नया दिन प्रारंभ कर रहा हूं मैं, अवतरित हुई आत्मा नया पार्ट बजाने के लिए आई हूं। अमृत वेले उठते ही ये संकल्प आए कि मैंने आज के लिए इस श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस शरीर में प्रवेश किया है, ये दिन आज के लिए मुझे मिला है, और आज अच्छे से अच्छा दिन बीते, इसलिए मैं सदा बाबा को साथी बना करके रहूंगा। ये कितना अच्छा फरमान है बाबा का कि बच्चे आंख खुलते ही अपने आप को स्मृति में रखो, मैं बाबा का एक अवतरित बच्चा इस सृष्टि मंच पर नई दुनिया की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूं, मैंने अवतार लिया है। अवतार केवल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आता है। हम सब बाबा के बच्चे अगर रोज स्मृति में लाएं सवेरे सवेरे कि बाबा ने मुझे भेजा है नया पार्ट बजाने के लिए, मैं अवतरित हुई आत्मा केवल नई दुनिया के स्थापना के कार्य के लिए हूं, तो अपने समान के साथ साथ ये फरमान अपने आप पालन होते जाएंगे। अवतरित हुई हूं, अवतार हूं, एक बहुत बड़ा सम्मान है, और श्रेष्ठ कर्म करने का फरमान है, तो स्वतः ही फरमान को हम पालन कर सकते हैं। तीसरा एक सम्मान मैं आपको स्मृति में दिलाऊं, क्योंकि बाबा बार बार कहता है कि तुम बच्चे मेरे विघ्न विनाशक हो, विद्यापति हो। विघ्न विनाशक वही बना जो विद्यापति है, नॉलेज फुल, जिसके अंदर फुल नॉलेज है वो विघ्न विनाशक है। फुल नॉलेज में क्या आता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों कालों की नॉलेज बाबा ने दी है, इसलिए बाबा जो हम सबको देखता है, जिस नजर से देखता है, बाबा कभी भी हमारे वर्तमान पुरुषार्थी लाइफ को नहीं देखता, और वर्तमान को देख करके अगर बात करें तो बाबा की दृष्टि में शायद परिवर्तन आ जाए। बाबा हमारे को जब देखता है तो देखता है कि बच्चा तो कल्प कल्प का विजयी है, इसी ने विजय प्राप्त की थी, इसी को मैंने ऐसा बनाया था, और ये चलो कोई बात आई है, कोई युद्ध आया है, कोई हिसाब किताब आया, पार हो जाएगा। तीनों कालों को देख करके नॉलेज फुल बन करके हमको दृष्टि देता है, शक्ति देता है, सकाश देता है, मदद करता है और पार करा देता है। हम बच्चे साधारण रूप में अपने वर्तमान को देखते, मेरे आगे इतने संस्कार हैं, मेरे शायद बहुत गलत कर्म किए हुए हैं, बार बार ये तूफान आ जाता, बार बार ये बात आ जाती, मैं तो विजयी बन ही नहीं सकता हूं। कई लोग इतना निराश हो जाते हैं, जो मैं कहता हूं ये दो बीमारियां जो है ना बहुत फास्ट गति से फैल रही हैं, एक निराशा की और एक कैंसर की, एक दिल की, हार्ट की, और दूसरी कैंसर की। हार्ट की बीमारी निराशा की बीमारी है, जब एकदम कोई आत्मा दिल शिकस्त हो जाती, एकदम अपने लाइफ से ही तंग हो जाती, कहती क्या जीवन है, क्या पार्ट है, मेरा तो कोई भाग्य ही नहीं, जैसे एकदम निराश होकर के अपने आप को हताश कर लेती, और हताश होते ही जैसे हार्ट की बीमारी आर्टरी ब्लॉक के बाद होती, कोई आर्टरीज रुक गई, ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज, तो हार्ट की बीमारी, दिल का दौरा पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी का उमंग उत्साह कम हो गया, समान भूल गया, उमंग उत्साह कम हो गया, माना उसका उमंग उत्साह खत्म, सेवाएं नहीं करेगा, कहेगा हमको तो अकेला अच्छा लगता है, एकांत अच्छी लगती, मुझे शांति बड़ी अच्छी लगती, मुझे योग बड़ा अच्छा लगता है, छोड़ो सेवाएं, सेवाओं में तो रोज खिटखिट है, रोज समस्याएं हैं, रोज बातें आती, बाबा ये तो बातें तो आएंगी ना, संगठन है, परिवार है, इतने बड़े फील्ड में निकले हो तो क्या युद्ध के मैदान में या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी कहे मेरे सामने बॉल आए ही नहीं, ऐसा कौन सा खिलाड़ी कहेगा मेरे सामने बॉल ही ना आए, मुझे मारना ही ना पड़े, कहीं मेरे पैर को न लग जाए, बॉल तो आएगा ही। अगर खेल के मैदान में, युद्ध के मैदान में हम आए हैं तो युद्ध न हो ऐसा नहीं हो सकता है, बातें आएंगी, खेल आए, खेल है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि मुझे तो विजयी बनना है। कारण नहीं है, लेकिन बाबा कहता बच्चे जो कारण है, आप सभी एक बार कारण अपने अपने नोट कर लो, मेरा उमंग उत्साह अगर डाउन हुआ या हो जाता है, निराशा आती है, उदासी आती है, हताशा आती है, या कभी कभी अभिमान आ जाता है कि मेरे सिवाय कोई नहीं, ये कैंसर की बीमारी, वहम की, अनुमान की, या मैंपन की, वो कैंसर की बीमारी। अगर ये कोई भी प्रकार की बीमारी है, कोई कारण है, तो क्या बाबा ने उस कारण का निवारण नहीं बताया? ऐसा कोई कारण नहीं है जो मुझसे आप पूछें कि ये कारण है मैं क्या करूं, है कोई ऐसा कारण जो बाबा ने बताया न हो कि बच्चे ये कारण है तो इसका ये निवारण है? कितने भी कारण हो, लेकिन मुझ आत्मा को बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हें निवारण स्वरूप बनना है, तुम्हें कारण नहीं समझाने बताने हैं, कारण तो बहुत हैं, रहेंगे, होंगे, लेकिन इसका निवारण क्या है? जब भी कोई दादी की बात हम लेके जाते थे कि दादी ये कारण है, ये कारण है, ये ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा, कहती अच्छा इसका हल क्या है, कोई है कि नहीं है? अगर हल है तो दादी के पास आओ, कारण लेकर के नहीं आओ, कोई भी प्रकार का कारण सुनाओ, हल बताओ, ऐसा हो रहा है संगठन में, होगा, दादी भी जानती होगा, बड़े भी जानते होगा, सब कुछ हो, लेकिन इसका हल भी है, और हल नहीं है तो फिर कारण कहां से लाए? कारण है तो निवारण भी है। इसलिए हम सब समर्पित बच्चों को कारण नहीं सुनाने, समस्याएं नहीं बताने, लेकिन बाबा कहता है तुम्हें समाधान स्वरूप बनना है, हर कारण का निवारण है, और अपने आप से ही निवारण मिल सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या क्या निवारण बाबा ने बताए हैं, अपने मन को समझा करके सबसे अच्छा निवारण का मैं जहां तक उपाय सोचा है, बहुत शुद्ध संकल्पों में रहना। अगर मैं आत्मा थोड़ा समय अपने शांत संकल्प, शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव थिंकिंग करना जानती हूं तो हर बात का हल मिल जाता है, बाबा टच कर देता है। मान लो उस समय नहीं पता चलता क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी बात हो गई, बाबा उसे समय टच कर, बच्चे ऐसे कहा इधर से पार हो जाओ, इधर से क्रॉस हो जाओ। एक बार एक छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं है, रियल बात है। जगदीश भाई विदेश गए थे, उन्होंने एक अनुभव यहां सुनाया कि अफ्रीका के देश में मैं गया और मुझे पता नहीं था, मैं अकेले सैर करने का शौक था, मैं अकेले निकल गया सेंटर से, मुझे काले लोगों ने घेर लिया और घेर लिया तो इतना खतरा था क्योंकि उनको जब तक कुछ दो नहीं तब तक वो मानेंगे नहीं और नहीं तो आपको मार देंगे। तो इतने खूंखार लोग थे, जो मैंने बाबा को याद किया, बाबा मैं तो फंस गया, मैं तो अकेले समझा नहीं था मैं भी कहीं फंस जाऊंगा। कहते मैं फंस गया तो मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा तो था नहीं उस समय जेब में जो मैं उनको कुछ दे दूं और छुटकारा पा लूं। और उन्होंने ऐसा घेरा कि कहां से आया है, क्या है तेरे पास, हम निकाल दे अभी। तो जगदीश भाई ने बड़ा रमणीकता से उसको कहा कि मैं भारत से आया हूं, इंडिया से आया हूं और मुझे इंडियन डांस बड़ा अच्छा आता है। बोला अच्छा इंडियन डांस आता है। तो कहते हैं जगदीश भाई कहते हैं मैंने इतना अच्छा डांस करना उनके आगे शुरू किया, कैसे बाबा ने टच किया पता नहीं, तो सब मग्न हो गए और सब नाचने लगे और जब सब नाचने लगे तो मैं भाग गया चुपचाप। इतना हंसी से सुना रहे थे कि कैसे मैं फंसा और बाबा ने कैसे युक्ति बचाई कि कैसे इनको खुश करके और निकल जाऊं मैं, क्योंकि उनसे मारपीट भी नहीं कर सकता और उनसे छुटकारा भी पानी है। टच किया बाबा ने और कहता मैंने ऐसे ऐसे डांस किया और घूमते रहे घूमते रहे घूमते घूमते मैं जब देखा सब मग्न हो गए भाग गए। तो ये विधि टच होनी चाहिए ना, ये युक्ति आनी चाहिए। समय पर परीक्षा आई है, पेपर आ गया, अब घबरा गया, अब क्या होगा अब क्या होगा। बाबा कहता बच्चे लाइन क्लियर हो, विजय तुम्हारी हुई पड़ी, विजय होगी, बाबा आपके साथ है, लेकिन बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करो। हो गया कैसे करूं क्या करूं, क्वेश्चन में चले गए उलझ जाएंगे और कोई पेपर आएगा घबरा जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो ये एक नॉलेजफुल स्थिति जो है ये विघ्न विनाशक स्थिति है। तो सदा ध्यान रखना ये बहुत ऊंचा सम्मान है कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। बाबा ने मुझे गणेश की छूट नहीं दी है, सूण तो नहीं दी है, लेकिन सूण परखने की शक्ति है। पेट बड़ा है माना हर बात को समाया है उसने, फैलाया नहीं, इसकी बात देखे उसको सुना दी, उसकी बात देखे उसको सुना दी। जितनी समस्याएं जितने टकराव पैदा होते उसका कारण है कि हम एक की देख करके दूसरे के आगे वर्णन करते हैं। और बाबा कहता बच्चे ये धूतीपना ठीक नहीं है, ये पर चिंतन पतन की जड़ है। हमें फरमान किया है बच्चे स्वचिंतन करना, पर चिंतन नहीं करना। कितने फरमान सुनते हैं हम, रोज बाबा की मुरली में फरमान आ जाता है झरमुई जगमुई मत करो, इससे पतन होगा। लेकिन अगर मैंने कर लिया, एक की बात दूसरे को सुनाई, दूसरे की तीसरे को सुनाई और वो बात दस के कान तक जाती है तो कितनी बड़ी रूप ले लेती, और जब बड़े रूप में उस तक पहुंचती है फिर हमारे तक रिटर्न आती है, उसी का रिटर्न जब जवाब मिलता है तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है कि मेरे लिए ऐसा कहा गया, मेरे लिए ये बात उठाई गई, और वहां पर एक दूसरे के दिल टूटते, संबंध बिगड़ते और आपस में संगठन टूटते। इसलिए बाबा मना करता है बच्चे सदा स्वचिंतन करो, मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालो। कितना बड़ा फरमान है बाबा का, जो बोलो ज्ञान रतन ही बोलो और कुछ नहीं बोलो, कानों से वही सुनो जो तुम्हारे काम का है, ऐसी कोई बात सुनो ही नहीं, बंद कर लो कान। तो अगर ये फरमान दृष्टि के लिए, वृत्ति के लिए, बोल के लिए, कानों के लिए, हाथों के लिए, जो हम सबको बाबा ने फरमान के रूप में दिए हैं, अगर हम स्मृति में लाते हैं तो बाबा के सब फरमान ऐसे लगते हैं बहुत सहज हैं, लेकिन बीच बीच में अलबेलापन, बीच बीच में अपने सम्मान की विस्मृति कुछ न कुछ अवज्ञाएं करा देती है और उस समय फरमान रह जाता है, संतुष्टता का अनुभव नहीं होता, इच्छा रह जाती कि बाबा मेरे से ये चाहता है, मैंने तो उसका रिटर्न किया ही। बाबा के अरमान वहां पूरे नहीं होते, तो मैं ये कहता हूं बाबा ने हमारे सब अरमान पूरे कर दिए। ऐसा कोई भी अरमान नहीं रहा इस जीवन में, वैसे गायन करते हैं कि अप्रापत नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछता है, आपसे भी कई ऐसे भाई होंगे जो कह सकते हैं कि सचमुच इस जीवन के अंदर किसी भी चीज की अप्राप्ति नहीं, सब प्राप्तियां बाबा ने हम सबको कराई है, एक एक बच्चा सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। और अगर स्थूल में कोई अप्राप्ति लगती भी है तो सूक्ष्म में अगर ज्ञान धन है उसके पास, जो आज बाबा ने कहा जिसके पास ज्ञान धन है वो सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अगर उसने ज्ञान का अच्छा चिंतन किया है, मुझे कभी कभी कोई कोई कह देते हैं, एक भाई ने मेरे को किसी जगह परिचय देते हुए कहा, राजू भाई आप तो कुबेर के खजाने के मालिक हो, आप ही शायद कुबेर हो। हमने कहा सचमुच बाबा ने मुझे कुबेर बनाया है। जितना ज्ञान है दादियों के द्वारा मिला, बाबा के द्वारा मिला, जिसके द्वारा मिला, वो सारा खजाना बाबा ने मुझे दे दिया। जितना दिया, चाहे वो कराची का था चाहे यहां का है, जितना है सब बाबा ने मुझे पढ़ने को दिया, सब चिंतन करने के लिए दिया, इसलिए सबसे बड़ा धनवान बाबा ने बनाया। और मैं हमेशा ये लक्ष्य रखता हूं कि मैं ज्ञान धन का ही चिंतन करूं और ज्ञान ही सबके आगे वर्णन करूं। इतना संपत्तिवान बनाया, फिर किस चीज की प्राप्ति है, कौन सी चीज कमी रखी। और स्थूल धन, स्थूल चीजें, स्थूल साधन, जो आवश्यकता है, बाबा की एक शर्त है, मैं इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, इच्छाएं तो एक के बाद एक जन्म लेती, लेकिन यदि कोई आवश्यकता है तो आज के इस लाइफ में मेरा अनुभव है, शुरू से जब से मैं सरेंडर हुआ हूं, 40-41 साल हो गए मधुबन में रहते हुए, कभी डिमांड नहीं की ये मुझे चाहिए, लेकिन जितनी आवश्यकताएं वो सब मेरे पास पूरी है, डिपार्टमेंट के अंदर भी, स्थूल रूप में भी कोई चीज की कमी नहीं रखी, मांगा नहीं है, मांगने से मरना भला, लक्ष्य रखा है बाबा अपने आप सब देगा, आवश्यकता है तो आएगा। श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम जैसा संपत्तिवान संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए कभी इच्छा नहीं रखो ये चीज मुझे मिल जाए, जितने में है सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है, दूसरा गुणों का धन है, तीसरा शक्तियों का धन है। ज्ञान का चिंतन करना, गुणों का चिंतन करना, और जिसके पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, स्थूल में सब प्राप्तियां उसकी अपने आप हो जाती है, संपन्नता का अनुभव हो। बाबा का ये अरमान है कि मेरा एक एक बच्चा संपन्न स्वरूप में हो, तब संपूर्ण बनेगा, पहले संपन्न बने, संपन्नता ही संतुष्टता का आधार है। मैं संतुष्ट हूं कह देते हैं हम सभी, लेकिन क्या मैं हर प्रकार से अपने आप को संपन्न बनाया है, या खाली खाली है कुछ नहीं और कहते हम तो संतुष्ट हैं। लेकिन संपन्नता ही संतुष्टता का आधार है, इसलिए बाबा के अरमान है कि मेरे एक एक बच्चे की चलन से, एक एक बच्चे के चेहरे से बाबा दिखाई दे, बाबा प्रत्यक्ष हो, ऐसा बाबा अरमान रखता है। ये मेरे बच्चे हर एक के दिल को जोड़ने वाले ब्रिज बने, मैं एक अरमान ये देखता हूं, बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे ब्रिज का काम करें, ये बैरियर का काम न करें, किसी के मार्ग में रुकावट न बन जाएं, लेकिन एक दूसरे को सहारा दे करके, साथ दे करके, निर्बल को भी बल दे करके, कमजोर को भी पांव दे करके, ये चलना सिखा दें, पाल ले जाएं, ये बाबा के अरमान है। अब बाबा के इन अरमानों को अगर हम सब चिंतन में लाएं, क्या क्या बाबा ने मेरे में अरमान रखे, बच्चे लॉफुल बनो, ला मेकर बनो, ला ब्रेकर नहीं बनना। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, अगर बाबा के इस फरमान को थोड़ा सा सामने ले आए कि बच्चे एक एक कर्म पर ध्यान दो, और कर्म पर नहीं इस समय की आवश्यकता है अपनी वृत्तियों पर भी ध्यान दो, क्योंकि जैसी वृत्तियां हैं वैसा वायुमंडल बन रहा है, और जिस स्थान पर हमें बाबा ने बिठाया है उस स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जवाबदारी है, और उसके लिए मुझे अच्छी अच्छी वृत्तियां, अच्छे संकल्पों में, अच्छे शुद्ध विचारों में रमण करना है, अच्छे चिंतन में रहना है। तो जितना मैं आत्मा बाबा के इस फरमान को पालन करती हूं, मुझे अच्छे चिंतन में रहना है, तो बाबा का अरमान पूरा होता है। बच्चों की दृष्टि से, बच्चों की वृत्तियों से, हमारे हर वाइब्रेशन से लोगों को लगता है कि आप तो अलौकिक लोग हो, आप साधारण नहीं हो, साधारणता उन्हें महसूस नहीं होती। तो हम सब साधारण नहीं हैं, बाबा ने हमारे में उम्मीदें जो रखी हैं, हम बाबा की एक एक उम्मीद को सामने रखें, बाबा की आशाओं को सामने रखें और उनको पूरा करते चलें, तो इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो मैं 500 मान में एक मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान, दूसरा विजयी रतन का समान, तीसरा विघ्न विनाशक का समान, चौथा पवनपूत का समान और पांचवा केवल केवल ओनली मैं गॉडली सर्विस के लिए हूं। कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी, यहां पर बहुत से भाई हैं जो आज समर्पित भट्टी में बैठे हैं, मैं जानता हूं कई जॉब करते हैं, हरेक सेंटर पर नहीं रहते। अगर हरेक सेवा केंद्र, जो सेवाएं आप कर रहे हो, चाहे वो छोटी सेवा है, चाहे कर्मणा सेवा है, चाहे वाचा सेवा है, चाहे नौकरी की बात है, कुछ भी कर रहे हो, मैं केवल खुदा की खिदमत के लिए हूं। समर्पित माना केवल खुदाई खिदमतगार, बाबा ने मुझे रखा है और जो तन मन धन जो मेरा पर्सनल कमाई है, साधन है, चीजें हैं, वो सब बाबा की हैं। ये केवल ईश्वरीय सेवा के लिए है, दूसरे कार्य में नहीं यूज हो सकती, तब कहेंगे समर्पित। नहीं तो मैं समर्पित हूं, क्या करूं, मुझे तो ये लौकिक जवाबदारी है, मुझे यहां देना पड़ता, मुझे यहां देना पड़ता। बाबा कहता फिर समर्पित की लिस्ट में क्यों आए हो? हम अगर समर्पित की लिस्ट में आ गए, बाबा ने मुझे अपने इस ग्रुप में बुला लिया, तो ये सबसे बड़ा इस समान स्मृति में रखना कि मैं खुदाई खिदमतगार हूं। और इन पांचों समानों के आधार से आप बहुत अच्छी तरह से बाबा के एक एक फरमान को पूरा करके चल सकेंगे। मैं एक दो अरमान बाबा के और सुना देता हूं। बाबा का अरमान है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने, स्वराज्य अधिकारी बने। अभी तीन दिन पहले सोमवार को व्यक्त मुरली सुनी होगी, जिसमें बाबा ने तीन बातें कही, अधिकारी, परोपकारी और सत्कारी। ये तीनों बातें ये समान के रूप में या फरमान के रूप में स्मृति में रखना कि बाबा का फरमान है स्वशासक बनो, स्वयं पर शासन करना है मेरे को, अपनी एक एक कर्मिंद्री पर शासन करना है, मन और बुद्धि पर शासन करना है, मुझे पर शासक नहीं बनना है, दूसरे पर शासन नहीं करना है, आर्डर नहीं चलाना, मुझे अपने पर शासन करना है। इसलिए बाबा का ये फरमान है बच्चे पर शासक न बन के स्वशासक बनना, स्व को अपने आर्डर प्रमाण चलाना। और एक एक कर्मिंद्री अगर आपके आर्डर पर चलेगी तो मैं आपको सचमुच गारंटी और अनुभव से कहता हूं आपके सब साथी आपका कहना मानेंगे, कभी उनको आर्डर नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने डिपार्टमेंट कभी किसी को आर्डर नहीं करता, मैं अपने आप को आर्डर में रखता हूं और मैं देखता हूं सब आर्डर प्रमाण कर रहे हैं, कभी नहीं कहना पड़ता ये करो, क्योंकि जानते हैं कहना क्यों पड़े, जब उनको करना है तो हमें करना है। तो हम सब अगर स्वशासक बनेंगे तो प्रशासन करने की जरूरत नहीं है, दूसरों पर शासन करने की जरूरत नहीं है। तो हम सबको बाबा ने अधिकारी भी बनाया है और सदा भावना है सबका भला हो, परोपकार। कोई अपकार भी करता है संगठन में, कई लोग ईर्ष्या के वश, जेलसी के वश आगे बढ़ता हुआ कईयों को सहन नहीं होता, संगठन है, कहीं ना कहीं टांग खींचने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कमी देख करके फट से कंप्लेन कर देते हैं, साथी ऐसे होते हैं, ठीक है, डरने की क्या बात। अगर कोई हमारे पास बहुत अच्छी चीज है, भले ले जाओ, बाबा हमको दोबारा दे देगा, क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? उस समय धैर्यता से, शांति से, जोश ना आ जाए, उत्तेजना ना आ जाए कि मेरे पर कलंक लगा दिया। कई तो ऐसे ऐसे कलंक लगाते हैं ना, सबसे बड़ा हथियार कौन सा यूज करते हैं, इसकी इसके साथ दृष्टिवृत्ति या व्यवहार ठीक नहीं है, इतना बड़ा हथियार यूज कर लेते हैं जो सबको मानना पड़े और सबको शक पड़ जाए, हो सकता है। इस हथियार से बच के रहना, लगेंगे होंगे, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं बाबा को समर्पित हूं, अगर मेरी दृष्टिवृत्ति में कुछ भी उसके अंदर नहीं है तो मैं डरूं क्यों? बाबा अपने आप मदद करेगा, साथ देगा, आई है परीक्षा पार हो जाएगी। ये ईर्ष्या का परिणाम है, ये कोई ना कोई जेलसी है, लोग आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते संगठन में। इसलिए मुझे परोपकारी बनना, सबका भला, सबका कल्याण हो, ये भी आगे बढ़े। अगर उसको कोई चांस मिल रहा है तो मैं ईर्ष्या न करूं, भले मिले, अगर मिल रहा है, और नहीं मिला तो हम दिलाने में प्रयास करें, भले इसको दे दो, मुझे ही मिले मैं क्यों कहूं, हमारे साथियों को मिले वो भी आगे बढ़े, अच्छी बात है। तो ये परोपकार की भावना और सबको सत्कार देते चलो। बाबा कहता है सत्कार या मान मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। देते चलो अपने आप आपको मिलेगा। तो ये बाबा के बहुत सूक्ष्म फरमान हम सब अगर पालन करते हैं अमृत वेले से रात्रि सोने तक, तो मैं समझता हूँ बाबा के अरमान पूरे होते जाएंगे और हमारा सम्मान बढ़ा रहेगा, हमको किसी के मान की इच्छा नहीं रहेगी। ओम शांति।
दिया हम।